पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाई, पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाई, सच्चे भाईचारे की गुण गाए, सच्चे भाईचारे की गुण गाए,
सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए।
कराती है अनोखी ये कहलाए, अनोखी ये कहलाए।
इस बंधन को जो बांधे वो,
इस बंधन को जो बांधे वो
स्वर्ग सुखों के पाए, वो स्वर्ग सुखों के पाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। पहनाए, ये गहना है पहनाए। संदेश सुनाए, पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए, सच्चे भाईचारे के ये गुण गाए, सच्चे भाईचारे के ये गुण गाए,
सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए।
ओम शांति, ओम शांति। पवित्रता का ये पावन पर्व रक्षाबंधन की आप सबको बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। वैसे तो ये पूरा संगम युग ही बाबा हम बच्चों को अपने प्रेम के बंधन में तो बांधे रखते हैं, लेकिन ये औपचारिक रूप से बहन भाई को राखी बांधती है, प्रेम का सूचक बताकर बांधती है, पर है तो ये अलौकिक भाई भाई का प्रेम। और बाबा ने भी हम बच्चों को अनेक बंधनों में बांधा है ना, प्रेम के बंधन में बांधा है। तो रक्षा बंधन, कौन से बंधन की रक्षा करनी है? बाबा तो रक्षक है ही है, लेकिन हम अपने भी रक्षक बनते हैं। तो स्व के रक्षक, अपना तन मन कैसे हमें सफल करना है उसका भी बाबा उपाय बताते हैं। फिर मर्यादाओं का भी रक्षक बनना है, जो मर्यादाएं बाबा कहते हैं उनका भी रक्षक बनना है। फिर यज्ञ का भी रक्षक बनना है, इस अलौकिक परिवार का भी रक्षक बनना है। रक्षक बनने के लिए बाबा ने हमें कई विधियां बताई है। तो जब हम इस प्रकार के रक्षक बनते हैं तब बाबा हमारा भी रक्षक बनता है, और उस बंधन में हम दोनों बन जाते हैं, शिव बाबा और हम आत्माएं। और ये सुंदर मेला केवल संगम पर ही होता है। तो वैसे तो रक्षाबंधन तो सबने मना ही लिया होगा, सबने मनाया होगा। बाकी तो मेन प्रोग्राम तो आज शांति वन में है, जहाँ मुख्य भाई बहनों को भी राखी बांधी जाएगी। और हमारी मुन्नी दीदी ने सबको बहुत सुंदर रक्षाबंधन का संदेश भेजा है, वो भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। और मुरली भी आज रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की है। आज 9/8/2025 है। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। प्रश्न है, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? माताओं पर ही ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं बाप? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? एक ऐसा कौन सा रिवाज है जो भारत में ही चलता है और बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं? उत्तर है, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है, परंतु जो भी भारत के लोग बाहर हैं वो भी तो बहुत मनाते हैं रक्षाबंधन। जहाँ भी जाते हैं तो राखी के लिए ही बुलाते हैं। तो रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, ये पवित्रता की निशानी है। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम माँ में कम याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ये एक शिव बाबा की ही महिमा है। ओम शांति, ये है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते हैं देने वाला। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण को ये राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं ना। सबसे ऊंचा पद अगर इस सृष्टि में है तो वो है लक्ष्मी नारायण का पद। तो वो पद कौन दे सकता है? भगवान के सिवाय तो और कोई नहीं दे सकता। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण को ये राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना भी वही करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, हाँ वर्षे में दी, वैसे ही श्री कृष्ण को दी। लक्ष्मी नारायण को वर्षे में स्वर्ग की राजधानी राजाई दी या श्री कृष्ण को दी, बात एक ही है। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की बात तो एक ही है ना, परंतु राजधानी है नहीं। इसलिए राजधानी श्री कृष्ण श्री राधे को नहीं है, वो तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं तब महाराजा महारानी कहलाते हैं। तो कहने में आएगा लक्ष्मी नारायण को दी राजाई, परंतु राजधानी तो है नहीं श्री कृष्ण राधे की। उनको सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई राज्य दे नहीं सकते। उनका जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे लक्ष्मी नारायण का। तो तुम बच्चे ही जानते हो, तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए। राधे की मनाते हैं, राधाष्टमी कहते हैं। तो श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्वर्ग के वासी थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो मुख्य बात कि उनों को ये राज्य किसने दिया, ये राजयोग कब और किसने सिखाया? ये तो कहते राजयोग से ये बने, विश्व का राज्य लिया, लेकिन ये कब उन्होंने राज्यों सिखाया, राज्यों मिला किसने सिखाया? बाबा कहते हैं ये राज्योग कब और किसने सिखाया, स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा राज्योग, सतयुग में तो वो है ही उत्तम पुरुष, कलयुग के बाद होता है सतयुग, तो जरूर कब सिखाया होगा राज्योग, तो जरूर कलयुग अंत में राजयोग सीखे होंगे, जो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त की। पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है, जरूर पतित पावन ही आया होगा, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने जरूर पतित पावन ही आया होगा। अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है, संगम युग पर कौन सा धर्म हम कहेंगे? ब्राह्मण, ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, तो इसीलिए संगम युग पर हमारा फुल धर्म का नाम क्या है, हम ये तो किसको कहेंगे ब्राह्मण धर्म, तो कहेंगे ब्राह्मण धर्म थोड़ी, ये तो वर्ण होता है, तो जब धर्म की बात आती है तो ब्राह्मण सो देवता ही नमः कहते हैं, तो आदि सनातन धर्म भी कहते हैं, तो आदि सनातन ब्राह्मण देवता धर्म, ये है फुल नेम कि ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। तो अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है ये किसको भी पता नहीं, पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये है पुरुषोत्तम संगम युग जो गाया हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक, इनों की आत्मा को आगे जन्म पूर्व जन्म में परम पिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया, जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर नए जन्म में मिलती है। इनका नाम ही है पुरुषोत्तम संगम, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। जरूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही इनों को कोई ने राजयोग सिखाया होगा, कलयुग में तो है अनेक धर्म, सतयुग में था एक देवी देवता धर्म, संगम पर कौन सा धर्म है, तो क्या कहेंगे संगम पर कौन सा धर्म है, कलयुग में तो अनेक धर्म है, सतयुग में एक देवी देवता धर्म, तो और संगम पर कौन सा धर्म है, जिससे ये पुरुषार्थ कर राजयोग सीखे और सतयुग में प्रारब्ध भोगी। तो समझा जाता है संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए, अभी हम देवता तो नहीं है ना, पर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, तो हम यही कहेंगे हम आदि सनातन ब्राह्मण सो देवता, हाँ, धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं समझा जाता है संगम युग पर ब्राह्मण द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए, चित्र में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कृष्णपुरी की, फिर विष्णु अथवा नारायणपुरी कहो, अब कृष्णपुरी कहो नारायणपुरी कहो बात तो एक ही है, अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं, हाँ चढ़ता है नशा, हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं, भक्ति मार्ग में तो जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को केवल झुलाएंगे, झूले में झुलाते हैं ना, माताएं आती है लाइन लगाती है, एक एक झूला झुलाता है श्री कृष्ण को, लेकिन हम तो बाबा कहते हैं उनके साथ रहेंगे, उनके साथ रास करेंगे। तो बाबा कहते हैं विष्णु, हाँ तो बाबा कहते हैं हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं इस पढ़ाई से और पावन बनने से, कैसे बनते हैं पढ़ाई से और पावन बनने से, शिव भगवानों वाच है ना, श्री कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में फिर ये बनती है, हाँ तो बाबा कहते कौन बनती है, यही ब्रह्मा, तो श्री कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में फिर ये बनती है। 84 जन्म लेते हैं ना, ये है 84वां जन्म, ब्रह्मा बाबा का जन्म है 84वां जन्म, इनका ही फिर ब्रह्मा नाम रखते हैं, नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आया, इसे बाबा कहते हैं ईश्वर ने रचना रची तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? भाई ब्रह्मा द्वारा रचना रची, फिर विष्णु शंकर भी तो साथ में है ब्रह्मा के, तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए, कैसे ये रचे गए? क्या छू मंत्र किया जो पैदा हो गए ब्रह्मा विष्णु शंकर? बाप ही उनों की हिस्ट्री बताते हैं। क्या है बाबा, क्या है ब्रह्मा विष्णु शंकर की हिस्ट्री? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन करते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। और ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कब आते हैं? केवल संगम युग पर ही होते हैं। शिव बाबा सृष्टि पर आते हैं तो सूक्ष्म वतन रचते हैं, और ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता रूप में साक्षात्कार के लिए निमित्त बनाते हैं, और साकार में जिनके तन में प्रवेश करते उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं, उनको सबसे पहले विष्णु का साक्षात्कार कराते हैं। शंकर द्वारा विनाश तो विनाश का भी साक्षात्कार कराते हैं, तो मानो संगम पर ही ये रचते हैं शिव बाबा। ईश्वर ने रचना रची तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए, कैसे रचा? क्या छू मंत्र किया जो पैदा हो गए ब्रह्मा विष्णु शंकर? बाप भी उनों की हिस्ट्री बताते हैं। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदलते हैं। ब्रह्मा कोई छू मंत्र से नहीं आया है, तो साकार में ही श्री कृष्ण का अंतिम जन्म शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किया, तो बाबा कहते हैं उनको एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदलते हैं। ब्रह्मा नाम तो नहीं था ना पहले, पहले तो लौकिक नाम तो दादा लेखराज था, पर शिव बाबा ने प्रवेश किया तो उनका नाम ब्रह्मा रखा, तो पहले तो नाम ब्रह्मा नहीं था ना। कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, ये गीता के शब्द हैं। तो जरूर पतित मनुष्य हुआ ना, बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में तो जरूर पतित मनुष्य हुआ। ब्रह्मा कहाँ से आया किसी को भी पता नहीं है। नाम रूप देश काल बदलता जाता है। श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर लिखी हुई है ना। श्री कृष्ण का चित्र मेडिटेशन हॉल में, हाथ हथेली में स्वर्ग है और नरक को लात मार रहा है, और उसमें लिखत भी थी, पहले तो लिखत थी अभी पता नहीं है या नहीं। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर लिखी हुई है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के चित्र भी बहुत दिखते होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे ना, सब जाएंगे, सब जगह कृष्ण के मंदिर तो होता ही है, सब देशों में भी होता है, हर देश में कई बार रक्षाबंधन पर जाते तो जन्माष्टमी भी वहां मनाते हैं, तो मंदिरों में बुलाते हैं विदेशों में भी। तो बाबा कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे ना, राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी पर राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधे जरूर होगी, राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस ही लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। उन्होंने ही 84 जन्म लिए, फिर अंत के जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने। बहुत जन्मों के अंत में बाप ने प्रवेश किया, और इनको ही कहते हैं शिव बाबा, ब्रह्मा को ही कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे, फिर ये जन्म लिया, उन्होंने अर्जुन का नाम कह दिया है, दिखाते भगवान ने अर्जुन को ये सुनाया तो अर्जुन का नाम कह दिया है, अर्जुन को राजयोग सिखाया, अब अर्जुन को अलग कर दिया है। अर्जुन भी तो बाबा ब्रह्मा बाबा को ही कहेंगे ना, जो अर्जुन करे वो, जो जिज्ञासा रखे जो पुरुषार्थ करे वो अर्जुन। तो बाबा कहते परंतु उनका नाम अर्जुन है नहीं, हाँ अर्जुन नाम रख दिया है, पर अर्जुन को राजयोग सिखाया, पर अर्जुन को अलग कर दिया है ब्रह्मा से, परंतु उनका नाम अर्जुन है नहीं। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, अर्जुन का तो बहुत कुछ बताते हैं, पर ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना। परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन कहाँ भी नहीं है। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं, सब बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे औरों को समझाएंगे। कथा सुनकर फिर औरों को बैठ सुनाते हैं ना, कोई भी कथा सुन के आते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं क्या सुनाया कथा में, तो क्या क्या सुनाया वो फिर औरों को सुनाते हैं। कथा सुनकर फिर औरों को बैठ सुनाते हैं, तुम भी सुनते हो फिर सुनाते हो। कौन सी कथा हम सुनते हैं और सुनाते हैं? अमर कथा है, सत्यनारायण की कथा है, तिजरी की कथा, यही है ना। नर से नारायण कैसे बनते, नारायण से नर कैसे बनते, तुम भी सुनते हो फिर सुनाते हो। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, लीप युग, एक्स्ट्रा युग। हाँ, ये एक्स्ट्रा है, कलयुग और सतयुग के जो बीच का युग है वो एक्स्ट्रा युग, लीप युग, एक्स्ट्रा युग। पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते हैं। हिंदू कैलेंडर अनुसार जब पुरुषोत्तम मास होता है तो फिर 13 महीना हो जाता है। इस संगम युग के त्योहार ही हर वर्ष मनाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको पता नहीं है। इस संगम युग पर ही बाप आकर पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं, पतित दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। तो रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है, और जो भारतवासी बाहर होते हैं वो मनाते हैं, वो भी मनाते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, परंतु वो कुमारी भी फिर अपवित्र बन जाती है। मानते तो ये ना, बहन भाई को बांधती है लेकिन वो कुमारी है तो उसका मान ज्यादा हो जाता है, फिर वो शादी करती है तो वो भी तो अपवित्र बन जाती है। परंतु वो कुमारी भी फिर अपवित्र बन जाती है। अभी बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने राखी बांधती है। तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं है। ये तो एक रस्म बना दी है, धागा बांधते हैं, परंतु बाबा कहते हैं ये राखी आदि बांधने की दरकार नहीं है। ये समझाया जाता है जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं, कोई कहते हैं क्रोध का दान दो, कोई कहते हैं प्याज मत खाओ, तो जो खुद नहीं खाते होंगे वो दान में लेते होंगे। इन सब से भारी प्रतिज्ञा तो बाप कराते हैं, वो साधु सन्यासी भी प्रतिज्ञा कराते हैं। खुद नहीं खाते होंगे तो वो अपने जो शिष्य उनको भी कहेंगे कि तुम ये नहीं खाने की प्रतिज्ञा करो, परंतु बाप तो सबसे बड़ी प्रतिज्ञा कराते हैं। वो तो प्रतिज्ञा कोई भी नहीं कराता है। तो इन सबसे भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते हैं। तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को याद करो। द्वापुर से लेकर तुम पतित बनते आए हो, अब सारी दुनिया पावन चाहिए। पतित तो बनते आए हो पर अभी सारी दुनिया पावन चाहिए, वो तो बाप ही बना सकते हैं। सर्व का गति सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं। भारत पावन स्वर्ग था ना, पतित पावन वो परम पिता परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, उनका तो जन्म होता है, उनके तो माता पिता भी दिखाते हैं श्री कृष्ण के। एक शिव का ही अलौकिक जन्म है जिसका कोई माता पिता नहीं है, स्वयं भू दिखाते हैं, कोई माता पिता ने जन्म नहीं दिया शिव को। एक शिव का ही अलौकिक जन्म है, वो खुद ही अपना परिचय देते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, शरीर का आधार जरूर लेना पड़े, मैं ज्ञान का सागर पतित पावन राजयोग सिखलाने वाला हूँ। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है और नर्क का विनाश कराते हैं। जब स्वर्ग है तो नर्क नहीं है, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं, स्वर्ग और नर्क जैसे दिन और रात भले वहीं होते हैं लेकिन साथ साथ नहीं होते हैं। तो जब स्वर्ग है तो नर्क नहीं, अब तो पूरा रौरव नर्क है। जब बिल्कुल तमो प्रधान नर्क बनता है तब ही बाप आकर सतो प्रधान स्वर्ग बनाते हैं। 100% पतित से 100% पावन बनाते हैं। पहला जन्म जरूर सतो प्रधान ही मिलेगा, तो बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना है, समझाना फिर हर एक का अलग अलग हो जाता है। बाबा तो समझाते हैं परंतु जब बच्चे दूसरों को समझाते हैं तो हर एक का समझाने का ढंग अलग अलग हो जाता है। बाप भी आज एक बात कल फिर दूसरी बात समझाएंगे, रोज एक ही बात तो नहीं समझाएंगे, भिन्न भिन्न शब्दों में समझाएंगे, एक जैसी समझानी तो हो न सके। अगर हम किसी को समझाएंगे वो फिर दूसरे को समझाएगा तो हमने जैसे समझाया वैसे तो हूबहू तो नहीं समझाएगा, वो फिर अपने ढंग से समझाएगा। तो बाबा कहते एक जैसी समझानी तो हो न सके। फिर बाबा कहते समझो टेप है, अब शिव बाबा बाप दादा टेप से बोलते हैं तो टेप में तो हूबहू ही सुनाई देगा, जो बाबा के माँ वाक्य जैसे है वो ही सुनाई देगा। लेकिन अगर टेप नहीं है और हमने किसको सुनाया और उसने जाके सुनाया वो तो अपने शब्दों में ही होगा। हाँ तो इसलिए पहली बार जब सुनाते ना, पहली पहली बार जब नई टेप मशीन बाबा के हाथ में आई तो बाबा को ये बताया, बाबा ने कहा क्या है, क्योंकि पता तो था नहीं ना उस समय कि, तो बाबा को कहा बाबा ये टेप मशीन है, आप जो मुरली चलाते हैं ना ये इसमें भर जाएगा और फिर ये वापस हम इसको रिवाइंड कर सकते हैं, फिर बाबा आपकी वही आवाज वही शब्द ये आप फिर से सुन सकेंगे। तो बाबा ने कहा अच्छा। फिर बाबा ने मुरली चलाई और वो टेप में भरी, हमारे चंद्रहास दादा थे तो उसने टेप में भरी और जब मुरली पूरी हुई बाबा को कहा बाबा अब ये सारी मुरली आपकी इसमें भर गई और बाबा अभी ये सुनाएंगे तो हु वो वैसे ही सुनाएंगे। तो बाबा को बहुत अच्छा लगा, अच्छा बच्चे सुनाओ। तो बाबा ने अपनी आवाज सुनी तो बाबा ने कहा अच्छा ये टेप मशीन तो बहुत सर्विसेबल बच्चा है, वो टेप मशीन भी बच्चा है, जाओ फिर विश्वरतन को बुला। विश्वरतन भाऊ माना भाऊ कहते थे बाबा उनको, विश्वरतन को भी विश्व किशोर को भी, कि आप जाकर के ये बड़े बड़े सेंटरों पर ले जाओ ये टेप मशीन, कहीं भी नहीं थे, और सबको सुनाओ, सबको कुमारका को सुनाओ, इनको सुनाओ उनको सुनाओ। और सचमुच दादा विश्वरतन गए, वो बड़ी टेप मशीन इतनी बड़ी होती थी, गए और एक एक बड़े सेंटर पर जाके वो पूरी यात्रा की और सुनाए। मुंबई में भी आए थे, हम उस समय मुंबई में थे, मैं समझती हूँ ये 1965 की बात होगी। तो फिर सबको बुला गया, इनवाइट किया, बाबा की आवाज में हम सुनेंगे। तो देखो उस समय ये बहुत बड़ी बात थी। तो बाबा कहते हैं समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुने भी परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे। अब क्या आपने सुना वही शब्द बोलो तो एक्यूरेट फिर वही नहीं सुना सकेंगे, फर्क जरूर पड़ता है। बाप जो सुनाते हैं तुम जानते हो ड्रामा में सारी नूंद है। अभी बाबा सुनाते हैं कल्प बाद फिर यही शब्द सुनाएंगे, कल्प पहले भी यही शब्द सुनाएंगे, तुम बच्चे भी जो सुनाओगे तो तुम भी कल्प पहले वही सुनाओगे, अभी सुनाते हो फिर कल्प के बाद भी वही शब्द सुनाएंगे। और हमने देखा है कि हम समझो कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग एक बार हुई फिर उसमें ठीक नहीं हुआ तो दोबारा करते हैं, पर दोबारा वही शब्द कभी नहीं आते हैं, फिर बदल जाते हैं। तो इसीलिए वही फिर से वही हो ये नहीं होता। तो बाप जो सुनाते हैं तुम जानते हो ड्रामा में सारी नूंद है, अक्षर बाय अक्षर जो कल्प पहले सुनाया था वो फिर आज सुनाते हैं, ये रिकॉर्ड भरा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं मैंने जो 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्षर बाय अक्षर सुनाया है वही सुनाता हूँ। ये शूट किया हुआ ड्रामा है, इसमें फर्क जरा भी नहीं पड़ सकता, इतनी छोटी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी? रक्षाबंधन तो बताया बाबा ने अभी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी? ये जो बच्चे ये भी बच्चे समझते हैं, आज से 5000 वर्ष से कुछ दिन कम कहेंगे। कब हुई थी जन्माष्टमी? 5000 वर्ष से कुछ साल कुछ दिन कम कहेंगे, क्योंकि अभी तो पढ़ रहे हैं। अब ये तो साकार मुरली है, जब श्री कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा की आत्मा पढ़ रही है, फिर वो श्री कृष्ण बनेंगे, तो थोड़ा 5000 साल से थोड़ा समय कम। तो बाबा कहते हैं तो 5000 वर्ष से कुछ दिन कम कहेंगे, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं, नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बच्चों के दिल में कितनी खुशी है। तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्र लगाया है, अब फिर श्री कृष्ण के नाम रूप में आ रही है। श्री कृष्ण की आत्मा 84 का चक्र लगाया, अब फिर श्री कृष्ण के रूप में आ रही है। चित्र में दिखाया है पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं और नई दुनिया हाथ में है, अभी पढ़ रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है श्री कृष्ण आ रहे हैं। हाँ, जब ये हम कहते हैं श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो कई ब्राह्मण बच्चे कहते हैं अभी तक आ ही रहे हैं, पैदल आ रहे हैं ना, अभी टाइम लग रहा है पैदल आने में, हवाई जहाज से आते तो जल्दी आ जाते हैं, तो आ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं, नई दुनिया हाथ में है, अभी पढ़ रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है श्री कृष्ण आ रहे हैं। जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे, आ रहे हैं क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं, तो जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे, ये पढ़ाई पूरी होगी तो श्री कृष्ण जन्म लेंगे। सुना, कई पूछते हैं ना श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया, अरे अभी ब्रह्मा बाबा तो वतन में हमारा इंतजार कर रहे हैं, वही तो जब वापस आएंगे तो श्री कृष्ण का जन्म होगा ना, तो अभी श्री कृष्ण ने जन्म नहीं लिया है, ये नहीं समझो कहीं श्री कृष्ण ने जन्म लिया, बहुत प्रश्न करते हैं। तो बाबा कहते हैं जरूर, हाँ ये पढ़ाई पूरी होगी तो श्री कृष्ण जन्म लेंगे, बाकी थोड़ा टाइम है पढ़ाई का, जरूर अनेक धर्मों का विनाश होने के बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ होगा। सो भी एक श्री कृष्ण तो नहीं, अकेला ने थोड़ी जन्म लिया होगा, सारी श्री कृष्ण पूरी होगी, सारी श्री कृष्ण पूरी होगी। ये ब्राह्मण ही है जो फिर ये राजयोग सीख देवता बन पाएंगे, देवताएं बनते ही है नॉलेज से, तो बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं पढ़ाई से। ये पाठशाला है, इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है, वो तो चलो पढ़ाई पूरी होगी 16 साल में हम डिग्री मिल जाती है, जन्म लिया 5-6 साल में स्कूल में दाखिला हुआ, फिर कितने साल पढ़ाई की, चलो पूरी हो गई 16 साल में, परंतु ये पढ़ाई तो बाबा कहते सबसे जास्ती टाइम लगता है, पूरा संगम योग इसमें तो सबसे जास्ती टाइम लगता है, पर पढ़ाई तो सहज है, बाकी योग में है मेहनत। मेहनत किस बात में? पढ़ाई में मेहनत नहीं है, योग में मेहनत है। तुम बता सकते हो श्री कृष्ण की आत्मा अब राज योग सीख रही है परम पिता परमात्मा द्वारा, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं विष्णुपुरी का राज्य देने। क्यों पढ़ा रहे हैं? विष्णुपुरी का राज्य देने। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणिया हैं, ये है संगम युग, ये बहुत छोटा सा युग है। चोटी, अब देखो बाबा ने कैसे इनकी भेंट की है, चोटी सबसे छोटी होती है ना, शरीर में चोटी कितनी होगी, इतनी सी होगी, चलो इतनी सी होती है, कईयों की थोड़ी और लंबी होगी, बस इतनी होगी, फिर उनसे बड़ा तो मुख होता है, मुख तो कितना बड़ा होता है, फिर उनसे बड़ी बाहें होती है, मुख तो फिर भी इतना होगा, बाहें तो और लंबी होगी, उससे बड़ा पेट होता है, सारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पेट होता है, फिर उनसे बड़ी टांगे होती है, टांगे तो और बड़ी होती है, तो विराट रूप दिखाते हैं, परंतु उसकी समझानी कोई नहीं देते। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं पर समझानी कोई नहीं देते। तो तुम बच्चों को ये 84 जन्मों के चक्र का राज समझाना है। शिव जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती, तो तुम बच्चों के लिए ये है संगम युग। तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया, पूरा हो गया ना हमारे लिए कलयुग। कलयुग को देखना, ये देखना, वो देखना, ये शौक सब पूरे हो गए। कलयुग तो पूरा हो गया। तो बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, अब मैं आया हूँ तुमको सुख धाम शांति धाम ले जाने लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे, फिर दुख धाम में आए। पुकारते हो बाबा आओ, इस पुरानी दुनिया में आओ। हाँ, पर कलयुग में बुलाते हम, इस पुरानी दुनिया में आओ। तुम्हारी दुनिया तो ये है नहीं, ये तो रावण की दुनिया है, तो रावण की दुनिया में आओ। अभी तुम क्या कर रहे हो? हम ब्राह्मण संगम पर क्या कर रहे हैं? योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो, ये काम कर रहे हो। योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। कहा भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुमको अहिंसक बनना है, डबल अहिंसक बनना है। न काम कटारी चलानी है, न लड़ना झगड़ना है। आज के दिन सब सुहा, न काम कटारी चलानी है, न लड़ना झगड़ना है। बाप कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। बाप कहते हैं, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम नीचे गिरते आए हो। ज्ञान से ही सदगति होती है। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जो जागते ही नहीं है, जागते ही नहीं है। हाँ, कितना भी जगाओ जागते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं, जो जागते ही नहीं है, इसलिए बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, पार्ट बिगर मैं भी कुछ कर नहीं सकता हूँ। हर एक का अपना अपना पार्ट है, पार्ट बिगर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, पूरे टाइम पर आता हूँ। कितना भी पुकारो, कितना भी बुलाओ, मैं आता तो अपने टाइम पर हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब कहता हूँ वापस चलना है तो मन मना भव, परंतु इनका भी अर्थ कोई नहीं जानते। अब किसने कहा मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ? श्री कृष्ण ने तो कहा ही नहीं है, ये तो शिव बाबा ने कहा है, परंतु इनका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं, देह के सर्व संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बच्चे मेहनत करते रहते हैं बाप को याद करने की। हाँ, सब मेहनत करते रहते हैं ना बाप को याद करने की। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सारे विश्व को सदगति देने वाला दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो न सके। ईश्वर बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज कर देते हैं, हेल से हेविन बनाते हैं, जिस पर फिर तुम राज्य करते हो। शिव को भोलानाथ भी कहते हैं, क्योंकि वो आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाए पावन बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत शो है, हाँ कितना शो है। यहाँ तो शांत में याद करना है। वो अनेक प्रकार के हठ योग आदि करते हैं, उनका तो निवृत्ति मार्ग ही अलग है। वो ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म योगी तत्व योगी है। वो तो हो गया, अब ब्रह्म तत्व क्या हो गया? वो तो हो गया आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वो फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, उसमें लीन हो जाएंगे। गोया आत्मा को मॉर्टल बना देते हैं, आत्मा को विनाशी बना दिया ना, अगर कहेंगे लीन हो गई आत्मा। तो बाप कहते हैं, मैं ही आकर सर्व की सदगति करता हूँ। शिव बाबा ही सर्व की सदगति करते तो वही हीरे जैसा है। सबकी सदगति करने वाला खुद तो बड़ा हीरा होगा। फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। तुम्हारा भी ये हीरे जैसा जन्म है, फिर गोल्डन एज में आते हो, ये नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। हाँ बाबा साहब, क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या हुआ, सब बताते हैं। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचयिता और रचना की नॉलेज तो नहीं है, अभी इनकी आत्मा के पूर्व जन्म में इनको नॉलेज मिलती है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करना है, अपनी जीवन हीरे जैसा बनाना है। दूसरा, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है, सदा नशा रहे कि ये पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। हाँ, ये नशा रखो। वरदान, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। अपवित्रता का नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुकते, रत्न धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते, वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं, उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। कब हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो? जब अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना, कभी गलती से भी किसी की अवगुण धारण नहीं करना। स्लोगन, सर्वंश त्यागी वो है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। सर्वंश त्यागी वही है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा दो। बिंदी बन जाओ बिंदी लगा दो, बिंदी में समा जाओ बिंदी बन जाओ बिंदी लगा दो, तो सारा विस्तार सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगे, बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे, बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। दादी जी की विशेषता, आज 9 तारीख है, हर बोल अनमोल सर्व के प्रति स्नेह का भाव। हर बोल अनमोल सर्व के प्रति स्नेह का भाव। दादी जी का हर बोल अनमोल था, उन्होंने कभी अपने दिल में किसी के प्रति नफरत नहीं रखी, सर्व के प्रति सच्चे रूहानी स्नेह का भाव रखा। कई बार हमारा एक बोल जीवन भर के लिए कोई को भी हमारा एक बोल जीवन भर के लिए भी कोई को दुश्मन बना देता है, एक बोल भी कोई को दुश्मन बना देता है हमारा। इसीलिए अपने बोल पर बहुत अटेंशन चाहिए। दादी जी ने कभी एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला जो किसी के दिल में दर्द पैदा कर दे। तो हमारा एक एक शब्द हर आत्मा को महान बनाने वाला महावाक्य हो, हम सब के स्नेही और शुभ चिंतक बनकर रहें। दादी सदा ऐसे ही कहते थे। और आज रक्षाबंधन है, सभी सेंटरों पर ये लेटर खास भेजा गया है रक्षाबंधन का राखी के साथ। तो रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभ बधाइयां, ये विशेष याद पत्र। विश्व रक्षक प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति लाडले, सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर, दृढ़ता को हर संकल्प बोल और कर्म में लाने वाले बाप के समीप और समान सभी निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण बाबा के नूरे रतन। रक्षाबंधन के पावन पर्व की ढेर सारी शुभ बधाइयों के साथ ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। अभी मुनि दीदी ने यह भेजा है सबको। बात समाचार, संगम युग पर ये राखी का कैसा न्यारा प्यारा बंधन है, जो अनेका अनेक बंधनों से आत्मा को स्वतंत्र बना देता है। मीठा बाबा कहे बच्चे, अब समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। जब चाहे देह का आधार लो और जब चाहे अशरीरी बन जाओ। अब पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त देहधारी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते प्यारे और न्यारे बनो। न्यारे और प्यारे बनो, चेक करो कोई भी कर्म इंद्रिय आत्मा को अपने बंधन में तो नहीं बांधती। जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर सकते हो, क्योंकि वर्तमान समय सभी आत्माएं बिना मेहनत के वरदान द्वारा दृष्टि और वाइब्रेशन द्वारा मुक्त होना चाहती है। तो उनकी इस शुभ इच्छा को पूरा करने के लिए पहले आप बच्चों को मेहनत से मुक्त बनना है। इसके लिए दिल से एक बाप के स्नेह में सदा समाये रहो। बाकी हम सबको तो प्यारे शिव भोलानाथ बाबा ने अपने रूहानी स्नेह के बंधन में बांधकर संपूर्ण पावन बनने और बनाने की दिव्य शक्तियां दी है। अभी हमें सर्व गुणों सर्व कलाओं सर्व शक्तियों से संपन्न बन अपने चलन और चेहरे द्वारा विश्व में बाप को प्रत्यक्ष करना है। बोलो, इस रक्षा बंधन पर ऐसा ही शुभ संकल्प दृढ़ता से लेंगे ना? तो आओ हम सब मिलकर संकल्प करें। अभी ये सबको संकल्प करना है मिलकर के। कौन सा? इसमें 5 संकल्प दिए हैं। अपनी वृत्ति दृष्टि और कृति को संपूर्ण पावन बनाकर विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनेंगे। दूसरा, सदा निर्विघ्न निर्विकल्प निर्माण और निर्मल बनकर रहेंगे। तीसरा, मन बुद्धि को एकाग्र कर सेकंड में अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। चौथा, किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आते आकर्षित नहीं होंगे। पांचवा, परमात्म स्नेह द्वारा मेहनत मुक्त बनेंगे और सबको बनाएंगे। इसी लक्ष्य और शुभ संकल्प के साथ आज आप सबके पास मधुबन बेहद घर से बहुत सुंदर स्नेह भरी राखी भेज रहे हैं। हमारी निमित बहनें अपने अपनी कला अपने अपने क्लासेस में जो राखी दिखाते हुए हर एक को बाबा के याद की राखी बांधकर सबका मुख मीठा कराना जी। राखी बंधवाते समय हर एक यही समझे कि ये पावन राखी हमें पर्सनल बाप दादा और अव्यक्त स्वरूपा दादियों की ओर से आई है। अच्छा, सबको मधुर याद, बाप दादा ने सभी निमित दीदियों के साथ ईश्वरीय सेवा में बीके मुनि बहन सह मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। आज राखी की आप सबको बहुत बहुत बधाइयां हो। प्यारे बाबा के साथ हम सब मिलकर के राखी मनाएंगे। वैसे तो कुछ दिनों से हम दादियों के साथ राखी का पर्व मना ही रहे हैं और आज तो विशेष दिन है, तो आज के दिन खास यहाँ पहले बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और भोग के बाद जो बाबा सुनाएंगे वो सुनेंगे और उसके बाद मधुबन के सभी समर्पित भाई बहनें, ग्लोबल हॉस्पिटल के समर्पित भाई बहनों को विशेष शांतिवन में राखी के लिए निमंत्रण है। शांतिवन में प्रातः 10:30 बजे शांतिवन के डायमंड हॉल में राखी का विशेष कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा अन्य भाई बहनें जिनके पास अपने ट्रांसपोर्ट की सुविधा है वह भी जा सकते हैं। 10:30 से राखी के बारे में सारा रहेगा और उसके बाद सभी वहाँ दादी बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और वरिष्ठ भाई दादियों को राखी बांधती हैं और दादियाँ हमारी सबको पहले से राखी बांध चुकी हैं। अगर कोई रह गए होंगे तो वो बताया जाएगा और हॉल में ही उनको राखी बांधवाई जाएगी। जिन्होंने बंधवा ली है वो नहीं बंधवाएंगे, बाकी उनको अन्य बहनें राखियां बांधेंगी। और दूसरी बात, जैसे राखी का दिन आता है भारत के अंदर तो खूब जोर जोर से बहुत खूब खुशी से राखी का त्यौहार मनाते हैं। विदेश में भी हमारे जो सेंटर्स हैं बाबा के बच्चे वो राखी के महत्व के कारण इसको भी बहुत प्यार से सेलिब्रेट करते हैं और फिर भारत से किसी ना किसी को बुलाते हैं कि राखी का दिन है, आप हमारे पास आओ, सब भाई बहनों को राखी बांधो। तो इसी तरह शीलू बहन को भी मलेशिया वालों ने राखी के निमित्त बुलाया है और शीलू बहन को हम बहुत बहुत करतल ध्वनि से शुभकामनाएं देते हैं। और अभी शीलू बहन यहाँ से जाएंगी और दोपहर को नीचे जा करके आज शाम को ही अहमदाबाद जाएंगी, रात को ही आपकी मलेशिया के लिए फ्लाइट है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं, कम से कम 25 दिन तो लग जाएंगे आने जाने में, फिर उसके बाद आपसे मिलेंगी, क्योंकि राखी के लिए उनको इतना अच्छा सत्कार है, प्यार है। बस राखी का दिन आता है तो बहुत खुश होते हैं, वो समझते हैं कि भारत से कोई आए। हाँ, अच्छा, चल फूल दो। आप सबकी तरफ से शुभकामनाओं की बहुत बहुत बधाइयां देते हुए शीलू बहन को हम दे रहे हैं।
हम सभी तालियों के द्वारा दीदी को विदाई देंगे और विदेश यात्रा की बधाई भी देंगे। हाँ बोलिए ना, जब तक भोग सेट
करें। ओम शांति। आप सबको अभी जैसे शशि दीदी ने बताया, मैं आज ही अभी निकलूंगी और आज ही रात को अहमदाबाद से फ्लाइट है कुआलालंपुर के लिए, मलेशिया के लिए। तो मीरा बहन ने तो बहुत बहुत जोर दिया, आपको आना ही है। भले हमने कहा कि यहाँ पर बहुत प्रोग्राम्स है, लेकिन आखिर मनवा ही लिया हमारी शशि बहन को, तो जरूर हम थैंक्स देंगे कि उन्होंने हमें छुट्टी दी। तो शशि बहन के लिए आप ताली बजाइए। तो 15-16 दिन की ही छुट्टी मिली है और वो मीराबेन चाहती है कि उनका पूरा देश है मलेशिया और बहुत सेंटर्स है, बहुत भाई बहने हैं, तो वो चाहती है कि मैं सब जगह भी जाऊं उनके देश में। अलग अलग टापू है वहाँ, मलेशिया खाली एक ही स्थान नहीं है, अनेक टापू भी हैं, तो सब जगह बाबा के सेंटर्स हैं, तो इसलिए वहाँ जाना है। आज रात की फ्लाइट है और हम बस 5.5 घंटे का ही फासला रास्ता है, कल हम पहुँच जाएंगे और कल से ही प्रोग्राम है। और हम आज मानो 9 तारीख है, 10 तारीख हम पहुँच जाएंगे और फिर 26 तारीख वहाँ से निकलेंगे, और 26 तारीख निकल करके रात तक अहमदाबाद पहुँच जाएंगे और 27 तारीख हम यहाँ आ जाएंगे। तो यही हमारा छोटा सा ट्रिप है। मेरे साथ ग्रीष्मा बहन चल रही है, ग्रीष्मा बहन जो ग्लोबल ऑफिस ज्ञान सरोवर में रहते हैं, तो वो भी मेरे साथ चल रही है क्योंकि इंग्लिश हैंड है और वो भावी क्लासेस कराएगी, मुरली सुनाती है, ट्रांसलेशन करती है, तो वो मेरे साथ चलेगी। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स और शशि बहन को भी खास थैंक्स। ओम शांति।
ओम शांति। आज राखी का विशेष दिन है और राखी के दिन हम सब बाबा के स्नेह में खो जाते हैं। हर एक सोचता है कि मेरी राखी भी बाबा के पास पहुंचे। बहुत से भाई बहनों ने बाबा को राखी भेजी, याद प्यार भेजा, और एक तो आप देख रहे हैं कि भोग का रुमाल भी ऐसा ही है जो राखी जैसा ही सजा हुआ हो, और राखियों का एक बहुत सुंदर माला भी बाबा के सामने रखी है, और मोर के अंदर भी राखी रखी है, और बाबा की थाली में तो हम सब मिलकर के बाबा के स्नेह के गोल्ड और सिल्वर के ही अपनी भावनाएं राखी के रूप में रखते हैं। और साथ साथ कुछ राखियां सामने रखी हैं, वैसे तो बहुत सी आई थी लेकिन थोड़ी ही सामने रखी हैं, और अभी हम सभी इसी संकल्प से बाबा के पास जाएंगे कि बाबा के सामने हम बैठे हैं और प्यारे बाबा हमको राखी बांध रहे हैं या फिर हम बाबा को राखी बांध रहे हैं, वह दृश्य आज हम बाबा के साथ वतन में जाकर के मिलन मनाएंगे। और सबको जाना है राखी बांधने के लिए, बहनें तो जाती हैं, भाई जाएंगे? राखी तो बहनें बांधती हैं, भाई बांधेंगे कि नहीं? जाएंगे ना। राखी में हमारे स्नेह की भावना है, सबको जाना है, बहनें भाई बच्चे सब बूढ़े सबको बाबा के पास जाना है। बूढ़ा तो बाबा का बच्चा कोई है ही नहीं, आत्मा तो जवान है और आत्मा तो शक्तिशाली है, सब बाबा के लाडले बच्चे हैं। अभी चलते हैं हम सब मिलकर के बाबा के पास, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, राखी देंगे, उसके बाद बाबा जो सुनाएंगे वो हम सब सुनेंगे। और आज के दिन अमृत नहीं होता, ये भी आपके ध्यान पर रहे। उसके बाद आप सभी नाश्ता करने जाएंगे। अच्छा, भट्टी के भाई बहने जो नीचे जा रहे हाथ, जो आज जा रहे हाथ खड़ा करें। अच्छा ठीक है, और जो कल जा रहे हैं ठीक है। अच्छा बट्टी के भाई बहनों को अगर टाइम है तो शांति वन में जो राखी बांधी जाएगी, मनाया जाएगा, वो राखी का भी आप कार्यक्रम देख सकते हैं। फिर से बता रहे मधुबन निवासी समर्पित भाई बहने, समर्पित ट्रायल और हॉस्पिटल के समर्पित भाई बहनों को शांति वन की राखी के लिए विशेष निमंत्रण है। 10:30 बजे डायमंड हॉल में पहुंचेंगे और वहां राखी के निमित्त सेलिब्रेशन रहेगा, वो अटेंड करेंगे और उसके बाद ब्रह्मा भोजन स्वीकार करेंगे। इसके अलावा जिनके पास ट्रांसपोर्ट का प्रबंध है वे भी जा सकते हैं और जो भी जाएंगे तो ब्रह्मा भोजन वहां स्वीकार करेंगे। अच्छा, ओम शांति।
झंझा बाबा की सच्ची लगन से बन जा बाबा की तू गली का हार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार हो नीले अंबर के
राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई।
ओम शांति। आज सभी ब्राह्मण कुलभूषणों के स्नेह भरी यादों के साथ मन की भावनाएं प्यार के स्वरूप की राखियां लेकर वतन में जैसे मैं बाबा के सामने पहुंची, बाबा तो पहले से ही इंतजार कर रहे थे। बाबा ने कहा आओ बच्ची, तो मैंने राखियों की थाली जैसे बाबा के सामने रखी तो बाबा मुस्कुराने लगे, बहुत प्यार से एक एक बच्चे की भावनाओं की जो स्नेह की भावनाएं थी उसको देख रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा आओ बच्चे, और बाबा एक कमरे की ओर गए। बहुत विशाल कमरा, और उसमें अनेक प्रकार की राखियां रखी हुई थी, और उनकी लाइट से चारों ही तरफ बहुत सुंदर चमक, और उन राखियों की लाइट की किरणों से बाबा का बहुत सुंदर श्रृंगार होता जा रहा था, जैसे कि बाप बच्चों के स्नेह के सूत्र में बंध गए हों, और बच्चे सारे बाबा को ऐसे ही प्यार से मिलन मना रहे थे, और बाबा उन सबको भी प्यार के झूले में झूला रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा वहाँ खड़े हो गए और सब राखियों को एक एक ध्यान से देख रहे थे, और ऐसे उंगली से इशारा कर रहे थे। लेकिन बाबा ने क्या किया, उन राखियों में से एक साधारण सी राखी थी वो बाबा ने हाथ में उठाई। जैसे वो हाथ में उठाई वो साधारण नहीं थी, वो बहुत सुंदर, उसकी चारों तरफ डायमंड ही डायमंड लग गए, और उन डायमंड से हर चीज इतनी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। बाबा ने कहा कि हर बच्चे का बाप के साथ बहुत प्यार है, और ऐसा प्यार है जिसने बाप को भी बच्चों के स्नेह में बांध रखा है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ट्रांसपेरेंट बिल्कुल क्लीन, और वो ऐसा स्नेह का सूत्र है जो हर समय डायमंड के रूप में दिखाई देता है, तो वो बच्चे भी गुप्त और बाप के हर समय दिल में समाये रहते हैं, और बाबा उनको हर समय बाप की छत्र छाया में रखते हैं। तो ऐसे ही बाबा फिर सब बच्चों को राखी के दिखा करके फिर बाबा ने हाथ में एक ऐसी राखी ली, और जैसे बाबा ने हाथ में राखी ली तो बाबा सब बच्चों के हाथ में कलाई पर राखी बनती जा रही थी। बाबा ने कहा कि बच्चे बाप के स्नेह में पहले से बंधे हुए तो हैं, लेकिन आज के दिन का विशेष बच्चों को संकल्प रहता है कि बाप ही हमें राखी बांधे। तो बाबा ने जैसे वो राखी दी, और उस राखी के दोनों तरफ एक तरफ लिखा हुआ था सफलता मूरत भव, दूसरी तरफ लिखा हुआ था निर्विघ्न स्वरूप भव। जो राखी के दो होते हैं ना, सफलता मूरत और निर्विघ्न स्वरूप, और जो राखी के बीच में था वो ऐसा सुंदर फूल बना हुआ था जैसे कि गुलाब का फूल होता है, और वो गुलाब के फूल की तरह था, और गुलाब के फूल की हर पंखड़ी के ऊपर इतने छोटे 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 डायमंड चमकते हुए दिखाई दे रहे थे, वो फूल तो नहीं लेकिन चमकते हुए डायमंड की तरह से था, और उसके बीच में उस फूल के अंदर एक ऐसा सर्कल था, उस सर्कल के ऊपर लिखा हुआ था फरिश्ता भाव। और जैसे वो फरिश्ता भाव का लिखा हुआ था तो उस फरिश्ते से ऐसी लाइट की किरणें निकलती थी और वो लाइट की किरणें दूर दूर तक पहुंच रही थी। फिर बाबा ने कहा, आज बाप बच्चों को कौन सी राखी बांध रहे हैं कि बच्चों को फरिश्ता बनना है, सफलता स्वरूप बनना है, निर्विघ्न स्वरूप बनना है। फिर बाबा ने कहा कि अब बच्चों को तिलक भी तो देना है। मैंने भी कहा, बाबा बच्चों को तिलक तो देना है। तो बाबा ने जब तिलक दिया, वो तिलक ऐसा था डायमंड जैसा, और उसके अंदर ऐसी लाइट दिखाई दे रही थी, उस लाइट के अंदर बाप दादा दिखाई दे रहे थे, और वो बाप दादा जैसे दिखाई देते, कभी शिव बाबा की लाइट कभी बाप दादा की लाइट दिखाई दे रही थी। बाबा ने कहा, बाप बच्चों को ऐसा तिलक दे रहे हैं, वह तिलक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और जैसे ही बच्चे ट्रांसपेरेंट स्थिति बनाते हैं तो हर समय बाप दादा की छत्र छाया और बाप दादा को विश्व के अंदर प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कि शिव बाबा ही विश्व के परिवर्तन का कार्य कर रहा है, वही सर्व आत्माओं का पिता है, उसकी भी प्रत्यक्षता कर सकते हैं। फिर तो बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को बहुत प्यार से कर रहे थे, तो मैंने कहा, बाबा आज तो मिठाई भी तो खिलानी होगी। बाबा ने कहा, पहले तो बच्चे बाप को मिठाई खिलाए। तो बाबा के बोलो खिलाओगे, तो बाबा ने कहा, बच्चों को पूछना। तो बाबा ने कहा, बाप बच्चों से यही मिठाई खाना चाहते हैं कि बाप को खुशखबरी सुनाओ कि बाबा हम निर्विघ्न हैं, ना हम समस्या सामने लाएंगे, समस्या समाधान स्वरूप बनेंगे। तो बाबा को यही बच्चों से खुशखबरी चाहिए कि हर समय बाप को साथ रख कर के ऐसा अनुभव करें, अपनी स्टेज को निर्विघ्न बनाना है। तो बाबा को खुशखबरी, तो बाप तो बच्चों के ऊपर वरदानों की ही वर्षा करते हैं और वरदानों से भरपूर करते हैं। तो बाबा ने ऐसे फिर हाथ किया और हर बच्चे के पास वरदान पहुंच रहा था, और उस वरदान में लिखा हुआ था, सदा खुशी में रहें, बाबा मेरा साथी, जिसे पाना था और पा लिया, बाकी और क्या चाहिए। इस खुशी में रहेंगे तो सदा वरदानों का अनुभव भी करेंगे। फिर बाबा ने सारे विश्व के अंदर जो ब्राह्मण बच्चे हैं उन सबको इमर्ज करते हुए याद भी किया, और उन सबको भी राखी का विशेष उनके हाथ पर भी बांधी, और सबको बाबा बहुत प्यार भी कर रहे थे। फिर बाबा ने पक्का कराया, सबका ये स्नेह का सूत्र अटूट है, या कभी ढीला तो नहीं हो जाता, कभी रंग तो नहीं बदल देता है, कभी किसका स्वरूप ऊपर नीचे तो नहीं होता है। तो बाबा ने कहा, बाप को तो निश्चय है, लेकिन बच्चे कभी कभी कई प्रकार के संकल्पों को लेकर स्नेह के सूत्र को ढीला कर देते हैं। ये स्नेह का सूत्र मजबूत रहे और पक्का रहे। फिर बाबा ने सबको बहुत याद दिया। ओम शांति।